नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उच्च शिक्षण संस्थानों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नए कदम उठाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन्य जीव संरक्षण और प्रबंधन के लिए पारंपरिक ज्ञान तथा एआई के अधिकतम उपयोग पर जोर दिया। पहली बार जारी नदी डॉल्फिन आकलन रिपोर्ट के अनुसार देश में 6,300 से अधिक डॉल्फिन। सरकार ने भारतीय रेलवे वित्त निगम तथा भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम को नवरत्न का दर्जा दिया। भारत और बेल्जियम ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में रक्षा सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं में वित्तीय जागरूकता पिछले वर्ष की तुलना में 42% बढ़ी। और दुबई में कल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से। समाचार संध्या के साथ मैं निखिल कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में 8वें विजिटर्स पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश के कई शिक्षण संस्थानों में वैश्विक ब्रांड वैल्यू हासिल करने की क्षमता है। उन्होंने देश में शोध को और प्रोत्साहन देने पर बल दिया।
शिक्षण के साथ साथ शोध कार्यों पर भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। शोध कार्यों के संबंध में मैं ये कहना चाहूंगी कि शोध कार्यों की सार्थकता, उसकी नवीनता, उपयोगिता और व्यापक प्रभाव में होती है। मैं आशा करती हूँ कि भारत के उच्च शिक्षण संस्थान स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करेंगे।
राष्ट्रपति ने उच्च शिक्षण संस्थानों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नए प्रयास करने का भी आग्रह किया।
वर्ष 2025 को हमने द ईयर ऑफ एआई घोषित किया है। आज मैं उच्च शिक्षा के नेतृत्व से जुड़े आप सभी लोगों से ये अनुरोध करती हूँ कि आप सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नए और बड़े काम करें और करवाएं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन्य जीव प्रबंधन को सहायता देने के लिए पारंपरिक ज्ञान और यांत्रिक मेधा का अधिकतम उपयोग करने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान तथा भारतीय वन सर्वेक्षण के साथ मिलकर जंगल की आग और वन्य जीव संघर्ष प्रबंधन के लिए यांत्रिक मेधा, मशीन लर्निंग तथा भू स्थानिक मानचित्रण के उपयोग पर भी बल दिया। एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री ने विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस पर आज जूनागढ़ जिले के सासनगिर में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने इन क्षेत्रों में स्थानीय आबादी और ग्रामीणों की भागीदारी के माध्यम से डॉल्फिन संरक्षण पर जागरूकता के महत्व पर बल दिया। उन्होंने बैठक में देश में पहली बार किए गए नदी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में कुल 6,327 डॉल्फिन का अनुमान लगाया गया है। श्री मोदी ने जूनागढ़ में वन्य जीवों के लिए राष्ट्रीय रेफरल केंद्र की आधारशिला भी रखी। उन्होंने बर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य में शेरों के संरक्षण के लिए सहायता की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने वन्य जीव संरक्षण में इको टूरिज्म की भूमिका और वन्य जीव पर्यटन के लिए बेहतर यात्रा और संपर्क की आवश्यकता पर बल दिया। श्री मोदी ने मानव और वन्य जीवों के बीच संघर्षों को अधिक प्रभावी ढंग से रोकने के लिए कोयम्बटूर में भारतीय वन्य जीव संस्थान परिसर में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की घोषणा की। उन्होंने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना का भी अनावरण किया। समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
गृहमंत्री अमित शाह ने गोवा में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर आज नई दिल्ली में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में गोवा में पुलिस, कारागार, अभियोजन और फोरेंसिक से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों के कार्यान्वयन तथा वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। सरकार ने भारतीय रेलवे वित्त निगम तथा भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम IRCTC को नवरत्न का दर्जा दिया है। ये दोनों रेल मंत्रालय के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हैं। इसके साथ ही सभी 7 रेलवे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को नवरत्न का दर्जा मिल गया है। नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने वाले अन्य 5 उद्यम कॉनकॉर, RVNL, इरकॉन, राइट्स और रेलटेल हैं। नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये रेलवे को रूपांतरित करने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि नवरत्न का दर्जा मिलने का अर्थ है कि संगठन मजबूत है और रेलवे के विकास में अधिक योगदान देता है।
All the 7 railway PSUs, listed PSUs, are of Navratna status. This is a very major achievement, and this reflects our Prime Minister Shri Narendra Modi ji's very focused attention on transforming railways.
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं. ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं. ये आकाशवाणी है. भारत और बेल्जियम ने हिंद प्रशांत क्षेत्र, विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र में रक्षा सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में बेल्जियम की राजकुमारी एस्ट्रिड और रक्षा मंत्री थियो फ्रेंकन के साथ मुलाकात की. बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के माध्यम और साधनों पर चर्चा की गई. श्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में बेल्जियम के निवेश का स्वागत किया. रक्षा मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत बनाने में निजी क्षेत्र की भूमिका पर भी बल दिया.
आज जो हमारा देश आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से कदम आगे बढ़ा चुका है, उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन में पब्लिक सेक्टर का है, लेकिन एक मेजर कंट्रीब्यूशन हमारे प्राइवेट सेक्टर का है, जो कि भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से आगे बढ़ा रहा है, और मैं मानता हूं कि इसको और अधिक बढ़ने की आवश्यकता है.
विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कल ब्रिटेन और आयरलैंड की यात्रा पर जाएंगे. यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड लेमी के साथ चर्चा करेंगे और कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों से मिलेंगे. आयरलैंड की दो दिन की यात्रा पर डॉक्टर जयशंकर वहां के विदेश मंत्री साइमन हैरिस से मुलाकात करेंगे. वे आयरलैंड में भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिलेंगे. भारत और नेपाल ने जल स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और आरोग्य क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए. इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने जोर देकर कहा कि समझौता ज्ञापन सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग के प्रति दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है. महिलाओं में वित्तीय जागरूकता पिछले वर्ष की तुलना में 42% बढ़ी है. ये बात आज नई दिल्ली में नीति आयोग की रिपोर्ट बोरोवर्स टू बिल्डर्स वेमेन्स रोल इन इंडियाज फाइनेंशियल ग्रोथ स्टोरी में कही गई है. एक रिपोर्ट.
नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीवीआर सुब्रमण्यम ने रिपोर्ट जारी करते हुए महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने में वित्त तक पहुंच की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कुल स्वनिगरानी आधार में महिलाओं की हिस्सेदारी पिछले वर्ष दिसंबर में बढ़कर 19.43% हो गई, जो वर्ष 2023 में 17.89% थी. रिपोर्ट के अनुसार मेट्रो शहर की तुलना में गैर मेट्रो क्षेत्र की महिलाएं अपने ऋण की स्वयं निगरानी सक्रिय रूप से कर रही हैं. प्रिया और दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती.
कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि सरकार ने देश में महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा बनाए रखने के लिए भारतीय कानूनों में संशोधन किया है. श्री मेघवाल ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में महिलाओं से संबंधित साइबर कानून और साइबर जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही. उन्होंने कहा कि देश की महिलाएं हर क्षेत्र में भागीदार बन रही हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से नमो ऐप ओपन फोरम पर और अधिक प्रेरक जीवन यात्राएं साझा करने का आग्रह किया है. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि नमो ऐप पर साझा की गई प्रेरक यात्राओं में से कुछ महिलाओं को 8 मार्च को महिला दिवस पर प्रधानमंत्री के डिजिटल सोशल मीडिया अकाउंट्स का संचालन करने के लिए चुना जाएगा. केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कचरा प्रबंधन तथा संसाधनों के पुनर्उपयोग को आज के समय की जरूरत बताया है. श्री मनोहर लाल ने आज जयपुर में एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत सर्कुलर इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.
भारत वैश्विक नेताओं को एक साथ लाकर 3R और सर्कुलर इकोनॉमी के एजेंडे को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. 3R सर्कुलर इकोनॉमी आज केवल एक एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बल्कि अब तो ये सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए एक इकोनॉमिक जरूरत भी ये हो गई है.
दिल्ली विधानसभा में आज जन स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा फिर शुरू हुई. पिछले सप्ताह दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ये रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी थी. ब्यौरा हमारे संवाददाता से.
सदन में पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी की आबकारी नीति पर बहुचर्चित कैग रिपोर्ट को पेश किया गया. इस रिपोर्ट में सरकार को 2000 करोड़ रुपए से अधिक के राजस्व घाटे की बात कही गई. इसके अलावा इस सत्र के दौरान सदन में आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं पर कैग रिपोर्ट को भी पेश किया गया. नवगठित सरकार के सत्र के दौरान मोहन सिंह बिष्ट को विधानसभा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। सत्र के दौरान आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री कार्यालय से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर को हटाने का आरोप लगाया और सदन में हंगामा किया। हालांकि भाजपा ने इस आरोप को सिरे से खारिज किया। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की पूर्व अध्यक्ष माधवी पुरी बुच और बंबई शेयर बाजार के दो अधिकारियों ने विशेष पीएमएलए अदालत के आदेश को चुनौती देने के लिए बंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। इसमें भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी को लिस्टिंग धोखाधड़ी मामले में सुश्री बुच और पांच अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। बंबई उच्च न्यायालय कल इस मामले की सुनवाई करेगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे बढ़ते मोटापे की चिंताएं और रोकथाम के उपाय विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें दिल्ली एम्स के कार्डियोलॉजी विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर सौरभ अगस्तम और आहार विशेषज्ञ डॉक्टर माला मनराल के साथ चर्चा प्रसारित होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दुबई में आईसीसी चैंपियंस क्रिकेट ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में कल भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार 2:30 बजे से शुरू होगा। इधर विमेंस प्रीमियर लीग WPL में आज गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स के बीच मैच हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात जायंट्स ने 19 ओवर में 5 विकेट पर 178 रन बना लिए हैं। अकादमी अवार्ड्स का 97वां संस्करण लॉस एंजलिस में संपन्न हो गया है। निर्देशक सीन बेकर की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म एनोरा 5 ऑस्कर जीतकर इस समारोह की सबसे बड़ी विजेता बनकर उभरी है। फिल्म एनोरा ने श्रेष्ठ फिल्म, श्रेष्ठ निर्देशक, श्रेष्ठ मूल पटकथा, श्रेष्ठ संपादन और श्रेष्ठ अभिनेत्री का अकादमी अवार्ड अपने नाम किया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 112 अंक घटकर 73,086 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 5 अंक कम होकर 22,119 दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 15 पैसे मजबूत होकर 87.36 रूपए के स्तर पर बंद हुआ। और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $72.97 प्रति बैरल के आसपास चल रही थी।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उच्च शिक्षण संस्थानों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नए कदम उठाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन्य जीव संरक्षण और प्रबंधन के लिए पारंपरिक ज्ञान तथा AI के अधिकतम उपयोग पर जोर दिया। पहली बार जारी नदी डॉल्फिन आकलन रिपोर्ट के अनुसार देश में 6,300 से अधिक डॉल्फिन। सरकार ने भारतीय रेलवे वित्त निगम तथा भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम को नवरत्न का दर्जा दिया। भारत और बेल्जियम ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में रक्षा सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं में वित्तीय जागरूकता पिछले वर्ष की तुलना में 42% बढ़ी। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में कल दुबई में पहले सेमीफाइनल में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।